उपस्थित सुधीजनों, देवियों, हमने सुख और दुख की चर्चा के प्रसंग चला रहे थे। बीच में 2 हफ्ते दूसरे कार्यक्रम के कारण आगे नहीं बढ़ा था, आज उसकी दूसरी श्रृंखला। हमने चर्चा की थी सुख और दुख क्या है, ये जीवन के अंग है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो केवल सुखी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हमेशा दुखी हो या सुखी हो, धनी हो या गरीब हो, ज्ञानी हो या मूर्ख हो, करोड़ों लोग उसे जानते हो या कोई भी ना जानता हो, सुख और दुख के मामले में सारी दुनिया में समानता है। कहीं का भी रहने वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इवन ए के आजकल सर्वे चलते हैं, जैसे अलग अलग तरह के डेवलपमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में सर्वे होते हैं, कौन से देश में कितने पढ़े लिखे लोग, कैसे विकास, जो डेवलपमेंट का क्या स्तर है, इसी तरह आजकल एक सर्वे होता है कौन सा देश ज्यादा सुखी देश है या दुखी देश है, मतलब किस देश के ज्यादातर लोग सुखी हैं। और आपको आश्चर्य होगा, जो सुखी देशों में जो पहले नंबरों में आता है वो भारत के बगल में एक भूटान करके छोटा सा देश है, और जो पहाड़ी पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ है, जहां आज से 10 साल पहले टीवी नहीं गया था, जहां मोबाइल अलाउ नहीं था, अभी 2 साल पहले तक सेलफोन मोबाइल फोन अलाउ नहीं था, वो देश दुनिया के सुखी देशों में श्रेष्ठ माना जाता है। कोई ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसा धनी देश सुखी में नहीं आते हैं, और भारत जैसा आध्यात्मिक देश भी सुखी नहीं हो माना जाता है। क्योंकि ज्ञान से, धन से सुख नहीं मिलता, सुख आपके मन की एक दशा है। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो किसी भी हालत में आप सुखी मिलेंगे। अगर आपको दुखी होने का रोग हो चुका है तो आप किसी भी हालत में सुखी हो ही नहीं सकते। हमने चर्चा की थी मन के प्रति जो विरुद्ध है, जो मन का प्रतिकूल है, मन के प्रतिकूल मतलब जो मैं चाहता हूं उसका उल्टा अगर मेरे साथ कुछ होता है तो वो दुख है, जो मैं चाहता हूं अगर वैसा ही होता है तो मेरे लिए सुख है। मेरे खुद के बच्चे हो, मेरा परिवार हो, तो भी मेरे लिए दुखदाई बन जाते हैं अगर वो मेरे मन के मुताबिक नहीं है। जरूरी नहीं कि वो बुरे हो, वो अच्छे हो सकते हैं, तब भी वो मेरे लिए दुख देते हैं क्योंकि वो मेरे मन के अनुकूल नहीं है। हो सकते हैं वो बुरे लोग हो पर क्योंकि वो मेरे मन के अनुकूल है इसीलिए मुझे सुख देते हैं। हमने ये भी चर्चा की थी जो दुखों का मूल कारण है, काम, लोभ, मोह, क्रोध। काम की चर्चा हमने की थी। आगे की चर्चा करने से पहले एक दो चीजें और स्पष्ट कर देते हैं। इंसान के जीवन में जो दुख होते हैं उन्हें हम तीन भाग में बांटते हैं, तीन तरीके के दुख हम मानते हैं। एक दुख तो जो प्रकृति के कारण होता है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हमारा कोई उसमें बस नहीं चलता, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, टर्नाडो आता है, सुनामी आती है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, संपत्तियां बर्बाद हो जाती हैं, आगे फिर नई नई बीमारियां होती हैं, भुखमरी होती है, सूखा पड़ता है। इन्हें हम कहते हैं आधि दैविक दुख, ऐसा दुख जो देवता से संबंधित, देवता का अर्थ प्रकृति से संबंधित है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक दूसरे तरह का दुख जो हमें मिलता है, जो हमारे आसपास के वातावरण से होता है, मेरे पड़ोसी से, मेरे घर वालों से, रास्ते में गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, बीमारी के कारण, इसे हम आधि भौतिक दुख कहते हैं। मतलब वस्तुओं के कारण, व्यक्तियों के कारण, संसार में जो कोई वस्तु या व्यक्ति है, लिविंग बींग या अनलिविंग बींग है, उनके कारण अगर हमें कोई कष्ट होता है, हम उन्हें आधि दैव भौतिक दुख कहते हैं। इन दुखों पर, इन इन चीजों पर हमारा कम चलता है, वो हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा सुख या दुख हमारे हाथ में नहीं होता। दुनिया में बहुत सारी चीजें घटती है जो हमारे हाथ में नहीं है, पर जो तीसरा दुख है और ये सबसे ज्यादा सबसे बड़ा दुख है और सबसे ज्यादा लोगों को इसके कारण दुख होता है और सबसे देर तक ये दुख हमारे पास रहता है, वो है हमारे मन के समस्याएं। मेरे पड़ोसी ने बड़ा घर खरीदा, बड़ी गाड़ी खरीदी, उसमें मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, ना शारीरिक ना आर्थिक कोई नुकसान नहीं हुआ, पर मैं दुखी हूं और इतना दुखी हूं कि लंबे काल तक दुखी रहता हूं। मेरा बेटा क्लास में 90% नंबर लाया तो भी मैं दुखी हूं, क्योंकि मेरी बहन का बेटा 95% रिजल्ट लाया। मुझे उसके 90% में कोई शिकायत नहीं, वो 60% लाता तो भी मैं खुश होता, बस शर्त यह है पड़ोसी का बच्चा 59% लाना चाहिए। ये जो मानसिक दुख हैं, जो मानसिक दुख मेरे अपने कारण होते हैं, जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, उन्हीं दुखों का इलाज हमारे पास होता है। उनको अगर हम कंट्रोल करें तो हमारे जीवन के 90% दुख नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कंट्रोल करें, मैंने कहा और हम कंट्रोल कर लेंगे, मतलब हम मतलब जरूरी नहीं कि आप ही करें, जो बोलता है वो भी आप में शामिल होता है। फर्क इतना होता है कि वो बोलता है और जो सुनने वाले इधर सुनते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना बोलने वाला सुनने वालों से बड़ा होता है, ये गलतफहमी में जब तक रहेंगे तब तक बाबाडम गुरुडम और सन्यासियों की विद्वानों की चलती रहेगी। दोनों बराबर होते हैं, बस एक बोलता है और दूसरा सुनता है। तो जो हमारी मानसिक समस्या, इसी को हम कहते हैं आध्यात्मिक दुख, ऐसा दुख जो मन से संबंधित है, यहां आत्मा से संबंधित मतलब मन से संबंधित। उसमें से एक चर्चा हमने की थी पिछले बार, जो हमारी इच्छाएं हैं कैसे दुख के कारण बनते हैं, अगर हम इच्छाओं को नियंत्रित करें तो हमारे दुख कम हो जाते हैं, उसके आगे आज हम बढ़ेंगे। दूसरा कारण होता है लोभ। पतंजलि का वो सूत्र मैंने आपको सुनाया था, पुण्या पुण्या कर्माशय क्लेश मूल काम लोभ मोह क्रोध प्रभव। इंसान के जीवन में जो भी बुराइयां जो दुख समस्याएं आती हैं वो बेसिकली काम लोभ मोह क्रोध उनका जड़ होता है। कामना पर चर्चा की थी, लालच पर। इच्छाएं जो पाने की चाहत होती है, ज्यादा से ज्यादा पाने की चाहत, लालच भी पाने का चाहत है, पर लालच और इच्छा में फर्क होता है। लालच जब आप इलीगल चाहते हैं, जो लीगल है उससे अधिक चाहते हैं, आप जितने के कैपेबल हैं उससे ज्यादा चाहते हैं, तो वो लालच में कन्वर्ट हो जाता है। व्यक्ति अपनी योग्यता से सामर्थ्य से आवश्यकता से जब ज्यादा चाहने लगता है तो वो लालची होता है, लोभी होता है। और लोभ अपने आप में तो दुख देता है, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती है, आपको जरूरी नहीं कि जो आप लालच करते हैं वो आपको मिले, ना मिलेगा दुख है, मिलेगा तो और मिलने से और नहीं मिला इसीलिए दुख है, तो मिला उसको संभाल के रखना ये दुखदाई है क्योंकि कोई चोर ना ले ले। पर लालच के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो खतरनाक है। गीता में कृष्ण कहते हैं लोभात भवति सम्मोह, सम्मोहात बुद्धि विभ्रमः, बुद्धि भ्रंशात स्मृति नाशो। मैं थोड़ा श्लोक को दोबारा रिपीट करता हूं, लोभात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति नाशात बुद्धि नाशः, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब लालच आता है तो मोह पैदा होता है, अटैचमेंट डिल्यूशन, मतलब आपको अच्छा बुरा सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। व्यक्ति में तमोगुण बढ़ता है, उसका जो तो इस तीसरा इंपैक्ट पड़ता है कि स्मृति याददाश्त खो जाती है। औरंगजेब ने अपने बाप को मारा सिंहासन की लालच में। जब तक आपको यह याद है कि मेरा बाप है, आप उसे मार ही नहीं सकते हो। जब तक आप ये याद रखोगे ये मेरा दोस्त है, आप उसे ठग नहीं सकते हो। जब भी आप अपने दोस्त को ठगते हो तब आप ये भूल जाते हो कि ये मेरा दोस्त है। जब भी बच्चे अपने मां बाप से बदतमीजी करते मतलब वो उस समय भूलते हैं कि मेरे मां बाप नहीं है, क्योंकि याद अगर रहेगा तो फिर आपका हाथ आपका मन जाएगा ही नहीं। और जब याददाश्त नष्ट होता है तो बुद्धि, बुद्धि का अर्थ डिस्क्रिमिनेट करने की क्षमता, अलग करने की क्षमता, ये अच्छा है ये बुरा है, ये चुनना है ये नहीं चुनना है, ये करना है ये नहीं करना, ये जो हमारी बुद्धि है जो हमें ये रास्ता बताती है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और मैं और आप जितना अच्छे हैं, जितना इंसान है, जितने परसेंट इंसान है उतने ही परसेंट इंसान है जितनी हमारी बुद्धि अच्छी है। तभी तो आप गायत्री मंत्र की इतनी महिमा होती है, क्योंकि उसमें आप क्या प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि को और तीव्र बनाओ। बुद्धि जितनी तीव्र होती है, जितनी अच्छी होती है, इंसान उतना बढ़िया इंसान बनता है। बुद्धि जितनी कम होगी उतना हम बढ़िया जानवर बनते हैं। बढ़िया जानवर का मतलब है शेर अगर दहाड़ता नहीं है, मार के नहीं खाता, फिर वो अच्छा शेर नहीं है, वो कायर शेर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा जानवर मतलब जिसमें जानवरपन भरा हो, जैसे अच्छा इंसान मतलब जिसने इंसानियत भरा हो। शेर अगर पालतू है फिर वो अच्छा जानवर नहीं है। बुद्धि जब घटती है तो हम अच्छा जानवर बनते हैं, बुद्धि जब बढ़ती है हम अच्छा इंसान बनते हैं। जानवर में क्या, थोड़े दिनों के बाद रिलेशन का कोई मतलब नहीं रहता है। ये मेरी मां है, ये मेरे बाप है, पशुओं में ऐसा कुछ सोच नहीं है। थोड़े दिन तक रहता है जब तक बच्चा पाला जाता है, पोषा जाता है, जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर सब बराबर हो जाते हैं। वहां कोई बंधु नातेदारी रिश्तेदारी कुछ नहीं होती है। इसी तरह के इंसान जब बन जाता है वो अपने संबंध को भूल जाता है, अपने भावनाओं को भूल जाता है, तो वो पशु बन जाता है। और जब बुद्धि का नाश होता है, जब आप अलग अलग करने की क्षमता खो बैठते हैं, धर्म और अधर्म में, अच्छा और बुरा में, किसको पूजूं किसको निंदा करूं, इसको निर्णय करना जब आपकी क्षमता के बाहर हो जाता है, तो हम विनश्यति, हमारी बर्बादी होती है। बर्बादी मतलब हमारा अधपतन शुरू होता है, हमारा गिरना शुरू होता है, तब हम कितनी गिरा हुआ इंसान है। गिरा हुआ इंसान का लक्षण क्या है? समाज में आमतौर लोग जिसको बुरा मानते हैं वो सब कुछ करने को उसको अच्छा लगता है, समाज में आमतौर पर लोग जिसको अच्छा मानते हैं वो सब उसके लिए बेकार है। परिवार का सम्मान करना चाहिए, बकवास है, मुझे कोई परिवार से मतलब नहीं। मां बाप का इज्जत करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बुद्धि की बर्बादी होती है। बुद्धि नाश कब होता है? जब आपकी याददाश्त खो जाता है। याददाश्त कब खो जाता है? जब आप मोह में पड़ जाते हो, किसी चीज की मोह में पड़ जाते हो। मोह में कब पड़ते हैं? जब आपकी लालच बढ़ जाता है, किसी चीज को पाने की लालच जो होती है, और व्यक्ति की गिरावट तब शुरू होता है, तो जीवन भर के दुख होते हैं। अगला आते हैं क्रोध, गुस्सा। गुस्सा पर वैसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है जो भी गुस्सा करता है उसको कितना नुकसान होता है। वैसे तो उसके रिलेशन कितने कम होते जाते हैं उसको पता है, गुस्सेल आदमी के रिश्तेदार और दोस्त कम होते जाते हैं वैसे भी, पर ये तो बाहरी नुकसान है और बड़ा कम नुकसान है। जो अंदरूनी नुकसान है वो ज्यादा खतरनाक है। आपकी सैकड़ों बीमारियों का कारण आपके गुस्सा में छुपा रहता है, आपका बीपी हाई रहता है, आपका आपकी डायबिटीज से लेकर अल्सर लेकर के पेट के बीमारी से लेकर दिमाग की बीमारी तक रहता है, आपको कभी भी स्ट्रोक। ये जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, हम सब उनको खतरनाक बीमारियों की चांस ज्यादा है। वो हार्ट स्ट्रोक हो, माइंड ब्रेन स्ट्रोक हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, अल्सर हो, ये ज्यादा होता है। तो गुस्सा अंदरूनी दुश्मन ज्यादा है बाहरी दुश्मन, बाहरी नुकसान करने से। हमारे एक मित्र थे, स्कूल में टीचर थे, ट्यूशन करते थे, बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, पर एक बच्चा जो उनके पास पढ़ता था फेल हो गया। उसके पिताजी आए उनको डांटने के लिए अध्यापक को कि आपके पास मैंने पढ़ाया कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा बच्चा फेल हो गया। बोले मैंने तो पूरी कोशिश की, तो मैं अब क्या कर सकता हूं, आपके बच्चा अगर पढ़ता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आपने कभी उसको मारा नहीं, कुछ डंडा नहीं मारा, कुछ नहीं किया, वो मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, तभी तो मैंने आपके पास भेजा। तो बोले मैं पढ़ाने के लिए ट्यूशन फी लेता था, मारने के लिए नहीं। अगर आप मुझे बताते मारना चाहिए तो मैं आपको कहता था कि 5-7 लाख रुपए का इंश्योरेंस मेरे लिए अलग से कर दो। बोले क्यों? क्योंकि मारने से जो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता उसका, ये आप तो पढ़ाने के लिए पैसा देते हो, मेरे ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद उसके इलाज का पैसा कौन देगा। बड़ा समझदार आदमी था। जब हम दूसरों को डांटते हैं, गाली देते हैं, गुस्सा निकालते हैं, सामने वाले का कितना नुकसान होता है पता नहीं है, पर घंटों तक हम बेचैन में रहते हैं, बेचैन में। कभी एहसास किया है जब आप गुस्से में लाल पीला होकर सामने वाले को कुछ कहते हैं, पता नहीं सामने वाले पर कितना असर होता है, आपके खुद पर कितना असर होता है। और कुछ तो बड़े इमोशनल लोग होते हैं जिनको दो दो तीन तीन लग जाता है उसे उभरने के लिए, उस बेचैनी से। इससे अच्छा है कि गुस्सा कंट्रोल करें। दुख का अगला कारण है दुख, क्रोध, मोह, डिल्यूशन, किसी चीज के प्रति जो जरूरत से ज्यादा आसक्ति। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम अपने पति या पत्नी से प्यार करते हैं, अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, अपनी संस्कृति से, अलग अलग कुछ लोग जो पूरे दुनिया से प्यार करते हैं। प्यार जब जरूरत से ज्यादा होने लग जाता है, स्वार्थ से जुड़ा हो जाता है, तो मोह में बदल जाता है। बच्चे को प्यार करना है, बच्चे की परवरिश अच्छी होनी चाहिए, बच्चा बीमार पड़े तो उसका इलाज होना चाहिए। पर बच्चा बीमार पड़ा, बच्चे के साथ कुछ कहीं एक्सीडेंट हो गया, फोन आया, फोन सुनते ही अगर मैं बेहोश हो गया तो ये प्यार कम है, मोह ज्यादा है। अरे इसका नुकसान क्या है? बच्चे का कुछ भला नहीं करते आप, बच्चे का तो कुछ भला कर ही नहीं सकते, खुद का भी नुकसान करते हैं। जिस व्यक्ति में जितना अधिक मोह होता है वो दूसरों का भला कम करता है, खुद का भी कम भला करता है, नुकसान ज्यादा करता है। दुनिया में जितने तरह के अंधविश्वास हैं ये इस मोह के कारण पैदा होते हैं। जितने तरह के तथाकथित परंपराएं चलती हैं वो भी मोह के कारण चलता है। किसी चीज के प्रति जरूरत से ज्यादा आसक्ति हमें नुकसान में डालता है। इसका अर्थ नहीं कि हम अपने परिवार से प्यार न करें, हम किसी वस्तु से प्यार न करें। प्यार कभी नुकसान नहीं करता। प्यार जब आसक्ति में बदल जाता है, मोह में बदल जाता है, तो वह नुकसान करता है। आज से 40-50 साल पहले ज्यादातर भारत के लोग, बच्चे बाहर नहीं जाते थे। कितना भी इंटेलिजेंट हो वो अपने गांव के आसपास छोटी मोटी नौकरी करके रहते थे। क्यों? मां बाप छोड़ते नहीं थे, मेरे आंखों के सामने रहो, कुछ भी करो, तेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है, वो दिल्ली जाएगा, IIT में पढ़ेगा, क्या करेगा, मेरे सामने चाहिए। माँ बाप के मोह के कारण लाखों प्रतिभाएं नष्ट हो गई। इसीलिए भारत के लोग बाद में जाके दुनिया में, इसीलिए नहीं कि उनमें प्रतिभा नहीं थी, वो तो बहुत सारे कारण है, भारतीय लोग क्यों प्रतिभावान होते हुए भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, पर एक कारण उनमें यह भी था कि मां बाप अपने बच्चे को अपने सामने से दूर नहीं देखना चाहते थे। ये जो मोह था, ये मोह भी उनमें से एक था। और आखिर अंतिम है अहंकार। अहंकार मैं और मेरा इससे जुड़ा हुआ है। जितना हम अधिक से अधिक इकट्ठा करते हैं, हमारा अहंकार उतना ज्यादा बढ़ता है, और अहंकार जितना बढ़ता है हम उतने दुखी होते हैं। व्यक्ति को अगर यह लगता है कि मैं बड़ा हूं, मुझे कुर्सी मिलनी चाहिए सबके आगे, मेरी तारीफ होनी चाहिए, और वो व्यक्ति आया सभा में, किसी ने उसको आगे कुर्सी नहीं दी, वहां हजारों लोग बैठे होंगे, उससे बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो आदमी दुखी मिलेगा आपको। दुख का कारण सिर्फ इतना है, उसके अहंकार को किसी ने संतुष्ट नहीं किया। जो लोग आगे बैठने में बड़ा रुचि रखते हैं, उनको पीछे सीट मिल जाए रोते हैं, दुखी होंगे। पीछे सीट, आगे सीट में, इसका अर्थ नहीं कि कल से आप पीछे बैठेंगे, ये फिर नुकसान हो जाएगा। आगे का मतलब यह नहीं मंच पर, हमारे जो साधु संन्यासी हैं आप देखते हैं भारत में, वैसे तो सन्यासी जो संकल्प लेता है, जो सन्यासी बनता है, वो तीन संकल्प लेता है कि आज से मैं, जो सन्यासी संस्कार दीक्षा लेते हैं तो उनको ये तीन संकल्प दोहराना पड़ता है कि आज से मैं लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा त्यागूंगा। लोकेशणा नाम यश कीर्ति, इन इससे दूर रहूंगा। दूसरी चीज है वित्तेषणा, धन संपत्ति पैसा, इनसे दूर रहूंगा। तीसरा है पुत्रेषणा, संतान उत्पन्न करना या जो काम वासना आदि से दूर रहूंगा। पर वैसे देखा जाता है ज्यादातर सन्यासी जब आते हैं, सन्यास बन जाते हैं, ये तीनों ऐषणाओं में कुछ ज्यादा ही, मतलब गृहस्थी में तो कम होता है, सन्यासी बनते ही कुछ ज्यादा ही ऐषणाएं बढ़ जाती हैं। और खास करके तो लोकेषणाएं, मतलब लोक मुझे ज्यादा से ज्यादा माने जाने सम्मान करें, इसके लिए तो कुछ ज्यादा ही पागल है। और इसका सबसे बड़ा आपको एक छोटा प्रमाण दूं, हमारे यहां जो शंकराचार्य व जो बड़े बड़े मठाधीश होते हैं, अब ये तो होते हैं जी, सारा संसार इनका सिद्धांत है, सारा दुनिया ब्रह्म है, हर किसी में ब्रह्म है, ईश्वर की सत्ता है, मतलब सब बराबर है, पर बैठेंगे सोने के सिंहासन पर, ऊपर बैठेंगे अलग से। और राष्ट्रपति भी बैठे ना, उसको उसकी सीट वो शंकर जो धर्माचार्य होते हैं उनसे थोड़ा नीचे होना जरूरी है। कैसी हिपोक्रेसी! आपको लगता होगा ये सन्यासी लोग ज्यादा सुखी होंगे आपसे, जो आपको सुख बेचते हैं, पर यकीन मानिए, कभी आप उनके अंदर झांकिए, उनके बहुत करीब बनिए, आप करीब ही से झांकेंगे, लगेगा आपसे ज्यादा दुखी वो है। भक्तों से ज्यादा दुखी गुरु मिलते हैं आजकल, यकीन मानिए। इसीलिए गुरुओं से जितना सावधान रहे उतना आप ज्यादा सुखी रहेंगे। ज्ञान लेने में कोताही मत करिए, कुत्ते से भी सीखना होता है, पर कुत्ते के साथ चिपक जाना नुकसान होता है। हमारे यहां समस्या है कि हम ज्ञान लेने में कम रुचि रखते हैं, गुरु की सेवा में ज्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है, हमारे दिमाग में बात बसा हुआ है कि गुरु ही मुझे आगे मुक्ति या मोक्ष जो भी है परमानंद तक लेने वाला, वो खुद ही नहीं जा सकता जी, अंदर से दुखी है, उसको हर बात अपनी अपने सम्मान की अहंकार की चिंता है,
इसीलिए देखेंगे ज्यादातर सन्यासी साधु बड़े खड़ूस शक्ल वाले होते हैं, मुंह लटका के घूमते हुए मिलेंगे, हंसते कम है, अंदर कोई सुख नहीं, आनंद नहीं, कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? तो उनको करोड़ों लाखों लोग पूछना चाहिए, अगर सभा में 10-5 लोग कम हो गए तो भी परेशान, इतने कम लोग मेरी सभा में, आगे से मत बुलाना ऐसे प्रवचन देने मुझे, मेरी भी तो कोई औकात है। सन्यासी की औकात कैसे आ गया मुझे भी नहीं आज तक समझ में आया। सन्यासी वही होता है जिसका औकात खत्म हो गया, पर सन्यासी भी सोचता है मेरी भी तो कोई स्थिति है। इंसान के जीवन में जो सबसे बेमतलब का बेफालतू चीज है भावना, वो है अहंकार। मोह फो थोड़ी बहुत तो कहीं असर करता है, अहंकार से ज्यादा बकवास चीज और कुछ इंसान के भावनाओं में नहीं होता है। और अहंकार बनता किससे है? किसी से भी। मेरे पास ज्यादा धन है, ये भी अहंकार का कारण है। ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा अच्छा रूप है, अच्छा कपड़ा पहना हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं तो अहंकार इतना सूक्ष्म और बारीकी है, उसको कभी कभी पता लगाना मुश्किल होता है आम इंसान के लिए। वैसे तो जितना आप इकट्ठा करेंगे उतना अहंकार बढ़ता है, यह गलत थ्योरी है। आप छोड़ेंगे तो भी अहंकार बढ़ता है। जो लोग इकट्ठा करते हैं वो इसीलिए इकट्ठा नहीं करते हैं कि उनको जरूरत है। आप एक बात बताएं, एक आदमी को गुजारा करने के लिए कितने रुपए में वो गुजारा कर सकता है? मतलब डॉलर में अगर हम हिसाब करें, बढ़िया से बढ़िया खाए पिए मस्ती में रहे, 5-7-8 हजार डॉलर बहुत है। पर आदमी अगर रोज भी 10 हजार डॉलर कमाए तो भी दुखी है। क्यों कमाता है? उसको क्यों 10 हजार कमाने पर भी वो दुखी मिलता है? इसलिए नहीं कि उसकी जरूरत में कहीं कमी है, इसीलिए कि वो दूसरों से बड़ा बनना चाहता है। अहंकार का सिंपल मीनिंग है, अहंकार का सरल अर्थ है, मैं दूसरों से बड़ा हूं, ये सोच। मैं अगर पैसे से नहीं तो ज्ञान से हूं, ज्ञान से नहीं शरीर से हूं, शरीर से नहीं कपड़े से हूं, कुछ नहीं तो मेरे घर के सामने एक बढ़िया फूल का पेड़ है वो सबसे बढ़िया है, तो मेरे पड़ोसी के तो भी मुझे खुशी है। इसीलिए जब आप इंसान को तारीफ करना होता है, लोग कैसे तारीफ करते हैं? जरूरी नहीं कि आप इंसान को हमेशा सामने से तारीफ करो, आप अच्छे हो, ऐसा तारीफ कम होता है। आपका घर बड़ा अच्छा है, खुश कौन होता है? घर कभी नहीं खुश होता है, व्यक्ति खुश होता है। आपका पेड़ बड़ा अच्छा है, खुश होती है, खुशी होती है, पेड़ को थोड़ी खुश है। क्यों? उस पेड़ के थ्रू मेरी मेरे उस अहंकार को संतुष्टि मिलती है। अब कपड़ा पहनते, कपड़ा पहनने का क्या क्या कारण क्या था कि शरीर को ढकें और सर्दी गर्मी जो प्राकृतिक समस्याएं हैं उसे बचें। अब अच्छा कपड़ा पहने तो पहनिए, $100 का पहनो, $200 का पहनो। आदमी $5,000 का कपड़ा पहनता है किस लिए? पता है किस लिए? सामने के आंखों में जलन होना चाहिए। अगर सामने वाले के आंखों में जलन नहीं हुआ तो वो $5,000 $5 के बराबर बेकार हो गए। और आप पहन करके गए, 5 लाख रुपए की बढ़िया सी साड़ी पहन करके गई और खूब सारे हीरे मोती पहन करके पार्टी में बातचीत होती रहती है, ये इतने का, वो यहां से लाया, ये यहां से लाया। पता चला वो अमुक की बीवी जो है वो तो 12 लाख की साड़ी है, मेरा तो 6 लाख की थी। वो 6 लाख रुपए ऐसे पानी में गिरे जिसका कौड़ी का भाव नहीं है। और घर में उस दिन महाभारत होगा, कहा थोड़ा अच्छा सा लाओ, ले आए सस्ते से 6 लाख की। देखो मिसेस गुप्ता 12 लाख की साड़ी पहनकर आई थी। 6 लाख 12 लाख में क्या हुआ? सिर्फ मेरे साड़ी अगर दूसरे के आंखों में जलन नहीं पैदा कर पाई तो वो साड़ी बेकार है। हम हम 5 रूम के या 7 रूम के कमरे में तो आराम से चल सकते हैं। 4 सदस्यों का परिवार है, 7-8 रूम बहुत है, आप 2-2 रूम एक एक रूम में रोज रोज सोएंगे बदल बदल के तो भी काफी है। तब भी आदमी 100-200 रूमों का कोठी बनाता है, क्यों? रहने के लिए नहीं, सिर्फ दूसरों से अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इकट्ठा करने से ही आदमी का अहंकार बढ़ता है, जिसके पास इकट्ठा करने की ताकत नहीं है वो छोड़कर भी अहंकार बढ़ाता है। व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी, बड़े पैसे इकट्ठा करके मारुति खरीद, मारुति समझते दिल्ली में, मारुति गाड़ी छोटी गाड़ी होती है जो, बड़ी खुशी हुई, पड़ोस में दिखाया बताया, खुशी हुई, लोगों ने तारीफ की, पता चला पड़ोस में धीरे धीरे लंबी लंबी गाड़ी आने लगी है। अब मेरी कोई औकात नहीं है, मारुति मेरे सामने। मैं दुखी इसीलिए नहीं कि मुझे कहीं जाने आने में प्रॉब्लम होता है, मैं दुखी हूं कि मेरे पास दूसरों से कम क्यों है, मुझे दूसरों से हमेशा ज्यादा होना है। तो एक उपाय होता है कि अगर मैं दूसरों से ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकता तो दूसरों के नजर में आगे बढ़ने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, गाड़ी तो क्या, मैं तो चप्पल भी आज से नहीं पहनूंगा, खाली पैर चलूंगा। ये जो सन्यासी वर्ग गृहस्थी और सन्यासियों में, उस सन्यासी का, उस साधु का क्या महत्व है जिसके साथ 1 लाख लोग जुड़े हैं, पता है? कभी कुंभ मेला में जाएंगे पता करिए। ये बाबा जी 15 साल से अनाज नहीं खाते हैं। तुम्हें गर्व अहंकार किस बात की है कि मैं कुछ भी खा सकता हूं? उसने देखा मैं कुछ खा, सब कुछ नहीं खा सकता, मेरी ताकत नहीं है। अपने अहंकार की तुष्टि के लिए क्या हुआ, मैं कुछ नहीं खाता हूं, बड़ा हुआ ना दूसरों से। तो हुआ क्या, जिसके पास लंबी लंबी गाड़ियां है वो पैर में गिरता है किसके, जो खाली पैर चलता है, खाली जूते, तुष्टि हुई। आप एक नियम बनाइए पूरे दुनिया में कि आज से हम किसी भी साधु को सन्यासी को कोई सम्मान नहीं देंगे, पैर छूना तो दूर की बात है, हम सम्मान नहीं देंगे। यकीन मानिए 1 साल में 90% सन्यासी वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके त्याग के पीछे जो मोटिवेशन है वो अहंकार की तृप्ति। अगर मैं क्लर्क बन के ज्यादा नहीं कमा पाया, मैं ऑफिसर बन के ज्यादा नहीं कमा पाया, जब मैं सन्यासी बन जाता हूं, साधु बन जाता हूं, उससे ज्यादा लोग मुझे तारीफ करते, ज्यादा लोग मुझे मानते, तो उससे जो संतुष्टि मिलती है, व्यक्ति कभी कभी अहंकार की तृप्ति के लिए अपने आप को तड़पाता है। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड करते हैं, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड और पता नहीं क्या वो जी गिनीज बुक रिकॉर्ड है, वो क्या है, कितना लंबा नाखून है, कितनी लंबा बाल है, कितनी देर तक नाचा, कितनी देर तक साइकिल चलाया, 5 दिन तक आदमी 5 दिन मान लीजिए 100 घंटा साइकिल चलाया, कष्ट तो शरीर को कितना हुआ होगा, उससे लाभ क्या हुआ, ना खुद को लाभ, ना संसार को लाभ, किसको लाभ, कुछ नहीं। सिर्फ मेरी अहंकार को तृप्ति मिलेगी जब ये होगा कि मैं किसी से बड़ा हूं। तो जीवन में हमारे ज्यादातर मुख्य दुखों का कारण हमारे अहंकार है। वो अहंकार ईर्ष्या के रूप में, दूसरे रूप में आता है। मुझे अपने पड़ोसी से शिकायत नहीं है, पर पड़ोसी का बच्चा मेरे बच्चे से ज्यादा नंबर लाए तो मैं दुखी हूं। मेरा बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, मुझसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा पड़ोसी का बच्चा उसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा कपड़ा कितना महंगा है उससे मुझे मतलब नहीं, मेरे पड़ोसी के कपड़े ज्यादा महंगे नहीं होनी चाहिए। ये जो टेंडेंसी है, ये जो भावना है, ऐसा नहीं कि ये आपकी है, इसकी है, इसकी है, ये मेरे आपकी सबकी है, ये हम सबकी, ये मानसिक स्थितियां है। तो जितना हम इन चीजों को रोकते हैं हमारा दुख उतना कम होता है। और ये सब कुछ ईश्वरीय है, ये समझ के सुख और दुख जो भी मिले, आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक, इनको स्वीकार करें, सुख और दुख दोनों को स्वीकार करें, तो हमारा जीवन ज्यादा संतुलित होगा, बैलेंस्ड होगा, हम ज्यादा अच्छा जीवन जी सकेंगे। ओम शांति।